दिन भर 25 दिसंबर बुधवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं लोग।
मैं आग्रह करूंगा कि झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों को, सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को, कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नागरिकों का हक है।
जानेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में क्या है अंतर, और वार्षिकी कार्यक्रमों में आज जानेंगे साल 2019 में घटी बड़ी घटनाओं का हाल। लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से आत्मचिंतन करने को कहा। हांगकांग में क्रिसमस के मौके पर भी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने शॉपिंग सेंटरों में जमा होकर लोकतंत्र के समर्थन में नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस इस्तेमाल की। कुछ लोगों ने पुलिस पर छाते और अन्य चीजें फेंकी, जिसके बाद पुलिस ने लाठी और आंसू गैस की मदद ली। इस साल जून से शुरू हुए इन प्रदर्शनों के कारण हांगकांग में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या से एक बार फिर हांगकांग में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस के मौके पर संदेश जारी करने की परंपरा के दौरान इस बार सीरिया, यमन, यूक्रेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में शांति स्थापित होने की प्रार्थना की है। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के लोगों के लिए भी प्रार्थना की। पोप ने प्रवासियों के कष्टों की ओर भी ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अन्याय के कारण अपने घरों और परिवारों को छोड़ना पड़ा। अन्याय की वजह से ही उन्हें कब्रिस्तान बन चुके रेगिस्तानों और समंदरों को पार करना पड़ा। ये अन्याय ही है जिसके कारण उन्हें शोषण और गुलामी और हिरासत केंद्रों में अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। अन्याय के चलते ही वो बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले, मगर बेरुखी की दीवारों के बीच फंस गए। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। ईरान में कम से कम 4 प्रांतों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। ये कदम सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की ओर से बुलाई गई रैलियों को देखते हुए उठाया गया है। जानकारी मिली है कि सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के आदेश के बाद इंटरनेट को बंद किया गया। पिछले कुछ समय से ईरान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने चेताया है कि रूस के समर्थन से सीरिया की सरकार द्वारा विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब में चलाया जा रहा अभियान गंभीर मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। मंगलवार को एक स्कूल पर किए गए हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी। कमेटी के काम की निगरानी करने वाली रेहाना जवार ने बीबीसी को बताया,
The area that is being targeted right now is actually a home for 600,000 people. And
जिस इलाके पर अभी हमला किया जा रहा है वहाँ 6 लाख लोग रहते हैं। अगर हमले जारी रहते हैं तो इन लोगों का विस्थापन हो जाएगा। पहले ही 1,30,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। जमीनी हालात खराब हैं क्योंकि लोगों को खाली हाथ घर छोड़ने पड़े हैं। अब वो अपने परिवारों के साथ शरण की तलाश में भटक रहे हैं। ये थे इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की अधिकारी रेहाना जवार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के एक शांति समर्थक समूह ने कहा है कि देश के पश्चिमी भाग से उनके 37 सदस्यों का तालिबान ने अपहरण कर लिया है। पीपल्स पीस मूवमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग शांति की अपील के साथ हेरात प्रांत से पैदल मार्च पर निकले थे, मगर फारा इलाके में जाने के बाद से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी तक तालिबान की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। 2014 में यूक्रेन के प्रायद्वीप क्राइमिया पर रूस का कब्जा होने के बाद पहली बार एक ट्रेन रूस से यहां पहुंची है। यहां पर हाल ही में एक रेलवे ट्रैक बनाया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग से चली ट्रेन कर्च स्ट्रेट होते हुए सेवास्टोपोल पहुंची। यूक्रेन का कहना है कि ये निर्माण उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। रूस के कदम की यूरोपीय संघ और अमरीका ने भी आलोचना की थी। पोप फ्रांसिस समेत 3 शीर्ष ईसाई नेताओं ने क्रिसमस के मौके पर दक्षिण सूडान के नेताओं से अपील की है कि वो अपने वादों को पूरा करें। गृहयुद्ध खत्म होने के 6 साल बाद की गई इस अपील को अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर आज दिल्ली में उनकी समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। इसके बाद तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने लखनऊ के सचिवालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फुट की कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया। लखनऊ में दिए उन्होंने अपने भाषण में केंद्र और राज्य सरकार के कामों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सुशासन दिया है और जनता सुशासन चाहती है। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने की तारीफ करते हुए हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों पर भी बोला। उन्होंने कहा कि हिंसक प्रदर्शनों में राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि समाज के लोगों का दायित्व है कि वो उसे सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा,
कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका ये रास्ता सही था? उनकी ये प्रवृत्ति योग्य थी? ये जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया, क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था? इस प्रदर्शन में, हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो सामान्य नागरिक जख्मी हुए, जो पुलिस वाले जख्मी हुए, उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रति पल भर हम सोचे क्या बीतती होगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों को, सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है, तो इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना भी तो नागरिकों का दायित्व है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अटल भूजल योजना की घोषणा की। साथ ही हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल टनल किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल भूजल योजना के जरिए 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान का भूजल सुधारना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए तकनीक का इस्तेमाल करके पानी की बर्बादी को रोका जाएगा। 6,000 करोड़ रुपये की इस योजना में 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक देगा। साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन का भी जिक्र किया, जिसमें अगले 5 सालों में 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए पीने का पानी मुहैया कराना है।
साथियों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज देश के 3 करोड़ घरों में ही, मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया, लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए, 3 करोड़ घरों में ही नल से जल पहुंचता है। सोचिए, 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ घरों में 70 साल में जो काम हुआ है, हमें उससे अनेक गुना काम आने वाले 5 साल में करना है। यानी 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पानी, साफ पानी, पाइप से पानी पहुंचाना है।
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अनुरोध किया कि वो ऐसी फसलें उगाएं जिनमें कम पानी इस्तेमाल होता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग पानी बर्बाद ना करें। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी के NPR की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसमें घर घर जाकर भारत में रह रहे लोगों की जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। 2010 में आखिरी बार हुए NPR में लोगों से 15 तरीके की जानकारियां पूछी गई थी, लेकिन इस बार इससे अधिक जानकारियां मांगी गई हैं। वहीं नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि NPR राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC का ही एक हिस्सा है। इस पर मैंने बात की BBC संवाददाता कीर्ति दुबे से।
ये जो लोगों का सवाल है, जिसके तुरंत बाद जैसे ये जिसको जब केंद्रीय कैबिनेट ने बोला कि हाँ अब NPR को हम सहमति दे रहे हैं, ये प्रक्रिया शुरू की जाए, तो उसके बाद तुरंत गृह मंत्री आ गए और उन्होंने पूरी बोले कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बोला कि इसका जो है वो NRC से इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों दो हैं और दो नियम हैं। लेकिन जब हमने इसको जब उनके इस दावे की जब हमने पड़ताल शुरू की, तो हमें ये पता चला कि उनका एक दावा जो ये कहना UPA 2 गवर्नमेंट थी, यानी कि 2010 में ये प्रक्रिया पहली बार की गई है, लेकिन इस टर्म का जो जिक्र है ये 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप बिल 1955 में, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले इस टर्म को लेके आए थे, जिसपे अवैध प्रवासी का जो टर्म था वो तब यूज हुआ। उसके बाद सबसे पहले जब एनआरसी का जिक्र किया जाता है तो उसके साथ ही एनपीआर का जिक्र है, यानी कि एनआरसी होने से पहले एनपीआर किया जाएगा। एनपीआर एक्चुअली एक लोकल स्तर पे डेटा जुटाया जाएगा। तो अभी जो ये सरकार दावा कर रही है कि अभी हम आपसे दावा कर, आपके दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं, आप सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, हम कोई कागज़ पत्री आपसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इसका जो अगला पड़ाव है जो हमें पढ़ के समझ आ रहा है वो ये कि आने वाले समय में जब आपका लोकल रजिस्ट्रार जो होगा वो आप ही के दावे के लिए आपसे कहेगा कि इसको प्रमाणित करिए। ये अब सरकार एनआरसी लाएगी या नहीं लाएगी ये तो सरकार का आगे का कदम है और अभी इस पर कोई रुख साफ नहीं है। ये हो सकता है कि सरकार ये कहे कि नहीं हम एनआरसी नहीं ला रहे हैं, लेकिन अभी जो सरकार ये दावा कह रही है कि एनआरसी का जो पूरा डेटा है वो एकदम अलग होगा एनपीआर से, ये दावा जो है इसे हम बहुत सही नहीं पाते हैं, क्योंकि एनपीआर किया ही इसी लिए जा रहा है और जो कि इसका जो 1955 में 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में, एनपीआर का जिक्र ही इसीलिए था कि उसके डेटा को एनआरसी पैन इंडिया एनआरसी में यूज किया जाए।
तो एनपीआर में और कौन कौन सी जानकारियां ली जाएंगी? जैसे कहा गया 2010 में सिर्फ 15 तरीके की जानकारियां ली गई थी, अब बढ़ा दी गई हैं, तो क्या क्या एनपीआर में पूछा जाएगा?
देखिए सरकार तो कह रही है कि बायोमेट्रिक के लिए हम जो बायोमेट्रिक जो आधार चाहिए वो कह रही है कि ये ऑप्शनल जानकारी है। कल गृह मंत्री कह रहे थे कि ये एक ऑप्शनल है, ये पूछा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग आप और हम जानते हैं कि जब आधार मांगा जाता है तो लोग इतना सोचते नहीं है, लोग आधार दे देते हैं। ऐसे में सरकार के पास बायोमेट्रिक जानकारी आ जाएगी, लेकिन अगर सरकार कह रही है कि ये बहुत, चूँकि एक आईडी कार्ड है, एक आईडी कार्ड का जिक्र पहले भी रहा है इस बार भी रहेगा, अब बायोमेट्रिक चूँकि आधार हर जगह पहुँच चुका है तो आधार लोग देते भी हैं। लेकिन मैं बात कर रही थी एक जानकार है इस मामले के और जो सबसे ज़्यादा इस पूरे मुहिम को, जो उन्होंने ही वेस्ट बंगाल में इस मुहिम को शुरू किया है, उनका नाम है रंजीत सुर। तो वो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट एक संस्था है वेस्ट बंगाल की, वो उसके लिए काम करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल में जो एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इस पूरी एनपीआर प्रक्रिया के लिए, उसमें एक कॉलम है जहाँ ये पूछा जा रहा है कि आपको अपनी माता का जन्म स्थान बताना होगा। मैंने इस वेरिफिकेशन के लिए हमने वो तस्वीर और फॉर्म भी मांगा है उनसे, तो बीबीसी ने भी उसे एक्सेस किया है और देखा है कि एक फॉर्म है जो कि ये जानकारी मांगता है कि आपकी माँ का जन्म स्थान क्या है। जो एनपीआर थे 2010 में जो हुआ है उसमें ये जानकारी नहीं थी और इस जानकारी को लेकर लोग कह रहे हैं कि सरकार क्या कह रही है उसकी मंशा में और वो जो कह रही है उसमें विरोधाभास साफ दिख रहा है, क्योंकि ये जानकारी जो है वो सेंसस में आमतौर पर नहीं मांगी जाती है।
जल्दी ही शुरू होगी एनपीआर की प्रक्रिया, अधिक जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और अब से एक सप्ताह बाद नया साल शुरू हो जाएगा। इस मौके पर हम फिर से आपके लिए वार्षिकी कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज सुनिए इस साल विश्व में कौन सी बड़ी घटनाएं घटी और वो आगे दुनिया को किस तरह प्रभावित करेंगी। इस वार्षिकी को तैयार किया है संदीप सोनी ने।
दुनिया जहान,
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साल 2019 को यदि विरोध प्रदर्शनों का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। अल्जीरिया, बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया, मिस्र, फ्रांस, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लेबनन, रूस और भारत समेत तमाम देशों में लोग सड़कों पर उतरे। इनमें से कुछ देशों में विरोध प्रदर्शनों की वजह सीधे सीधे आम लोगों की जेब से जुड़ी हुई थी, जैसे ईंधन के दाम में बढ़ोतरी, मेट्रो के किराए में वृद्धि और व्हाट्सएप पर टैक्स लगाना। वहीं कुछ देशों में नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बने कानूनों को जब सरकारों ने आगे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने भी पीछे हटने से मना कर दिया और सड़कों पर जन सैलाब उमड़ता चला गया। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की वजहें भले ही अलग अलग देशों में अलग अलग रही हों, लेकिन तमाम देशों में भ्रष्टाचार, असमानता, राजनीतिक व्यवस्था की खामियां और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था ने प्रदर्शनकारियों के स्वरों को बुलंद करने में अहम भूमिका निभाई। जनता के जोर के आगे जहां सूडान, अल्जीरिया और बोलीविया जैसे देशों में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे नेताओं को कुर्सी खाली करनी पड़ी। वहीं हांगकांग का विरोध प्रदर्शन किसी नतीजे पर पहुंचे बिना चीन के लिए सिरदर्द बना रहा। साल 2019 में हुए विरोध प्रदर्शनों के एक बड़े हिस्से को दूसरा अरब स्प्रिंग भी कहा गया। अरब देशों में जिस तरह के प्रदर्शन साल 2011 में हुए, उसी तरह के प्रदर्शन साल 2019 में भी नजर आए। इस बार शुरुआत हुई सूडान से, जहां राष्ट्रपति उमर अल बशीर का सत्ता का नशा टूटा। इसी तरह अल्जीरिया में राष्ट्रपति अब्दुल अजीज का पांचवी बार राष्ट्रपति बनने का सपना सपना ही रह गया। मिस्र में राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। लेबनान, इराक और ईरान के प्रदर्शनों ने अरब स्प्रिंग को एक नई पहचान प्रदान की। तमाम प्रदर्शनों ने एक बात और साफ की, वो ये कि लोकतंत्र जीवित है और उसकी जड़ें कमजोर नहीं है। साल 2019 में चरमपंथ अलग अलग चेहरों में सामने आया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस का जोलो द्वीप तब अचानक चर्चा में आया जब एक रोमन कैथोलिक चर्च में दो बम धमाकों में कम से कम 20 लोग मारे गए। इस हमले के साथ ही फिलीपींस में इस्लामिक चरमपंथियों की सक्रियता की खबरें सामने आईं, जिन्होंने भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों की चिंताओं को बढ़ाया। चरमपंथ से जुड़ी चिंताओं में तब और इजाफा हुआ जब न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में दो मस्जिदों पर बंदूकधारियों के हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बाल बाल बचे। न्यूजीलैंड के इतिहास में इस चरमपंथी हमले को काला दिन कहा गया।
गुड इवनिंग फ्रॉम हियर इन श्रीलंका, वेयर द फर्स्ट मास फ्यूनरल्स हैव बीन टेकिंग प्लेस आफ्टर ईस्टर संडे सुसाइड अटैक्स ऑन चर्चेस एंड होटल्स दैट हैव नाउ लेफ्ट 321 people dead.
इसके बाद बारी आई श्रीलंका की, जहां चरमपंथियों ने चर्च और होटलों पर हमला करके 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। श्रीलंका की सरकार खुफिया जानकारी मिलने के बावजूद इन हमलों को रोक नहीं पाई।
Prevented the security services acting on warnings that attacks were being prepared.
वहीं भारत के खुफिया तंत्र की नाकामी तब उजागर हुई जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवान मारे गए।
पाकिस्तान has recalled its high commissioner from India for consultations. This follows a sharp rise in the diplomatic tension between the two regional rivals after a suicide attack on Indian troops in Indian administered Kashmir.
इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला करके बड़ी संख्या में चरमपंथियों को मारने का दावा किया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा।
Pakistan's Prime Minister Imran Khan says there'll be retaliation if India launches any military response to the recent suicide bombing in Indian-administered Kashmir.
अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा।
और ये बाकी दुनिया के लिए भी चिंता का सबब बना रहा। इसके अलावा पश्चिमी देशों में कभी चाकू, कभी बंदूक, तो कभी सड़क पर चलती गाड़ियों से छोटे बड़े नस्ली हमले होते रहे।
Chinese tech firm Huawei is cut off from Google and their Android devices are in limbo after a US executive order blacklists them.
साल 2019 में कुछ मुद्दे, कुछ घटनाएं, कुछ नेता और कुछ रणनीतियां ऐसी रहीं जो शक्ल, जगह और तौर तरीके बदलकर साल भर विश्व मानचित्र पर घूमते रहे।
It's war, but not with tanks and guns. This time, tariffs and Twitter feeds, the ammunition in the latest escalation of a bitter trade dispute between the US and China.
सबसे पहले बात ट्रेड वॉर की। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर साल भर जारी रहा और कभी चीन अमेरिका पर तो कभी अमेरिका चीन पर भारी पड़ता नजर आया।
The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
ब्रेग्जिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के मुद्दे पर टेरिजा मे को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना पड़ी और बोरिस जॉनसन चुनाव के बाद ब्रिटेन के मजबूत प्रधानमंत्री बनकर उभरे।
Good morning, everybody. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you all very much. This One Nation Conservative government has been given a powerful new mandate.
अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहली बार सिंगापुर में मिले और उसके बाद ट्रंप उत्तर कोरिया की जमीन पर पैर रखने वाले पहले अमरीकी नेता बने।
उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात की खबर दी। साथ ही वहां के मुख्य अखबार ने भी दोनों की मुलाकात की 35 तस्वीरें प्रकाशित की। इससे ये तो लग रहा है कि उत्तर कोरिया इस मुलाकात से बेहद खुश है, लेकिन सामान्य तौर पर उत्तर कोरियाई जनता को इस तरह की समिट के बारे में बहुत बाद में पता चलता है, जो कि इस बार पहले ही पता चल गया, तो ये इस मामले में थोड़ी अलग बात थी।
हांगकांग के प्रदर्शन बाकी दुनिया के प्रदर्शनों से अलग साबित हुए, जहां चीन अपनी नीति पर और प्रदर्शनकारी अपने विरोध पर कायम रहे।
जबरदस्त विरोध के बावजूद हांगकांग सरकार टस से मस नहीं हो रही। प्रदर्शन में वास्तव में कितने लोग आए इसे लेकर बहस हो रही है, मगर निश्चित तौर पर यह संख्या लाखों में थी। शहर के रास्तों पर उतरे प्रदर्शनकारी प्रत्यर्पण कानून में बदलाव का विरोध कर रहे थे।
मध्य पूर्व के देशों के लिए साल 2019 बीते कई वर्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा उथल पुथल वाला साबित हुआ।
बेदानत अगर रूजी बिखाहत जलवे नफ्त ईरान را بگیرد نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد।
ईरान साल भर अमरीका को चुनौती देता रहा और अमरीका ने भी प्रतिबंधों का शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि हॉर्मूज की खाड़ी में तेल टैंकरों पर संकट के बादल मंडराते रहे और कई तेल टैंकर हमलों के निशाना भी बने। सऊदी अरब खाड़ी देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी कोशिशों को एक बड़ा धक्का तब लगा जब सरकारी तेल कंपनी अरामको के दो बड़े तेल ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। ईरान के सहयोगी हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका ने इस हमले के लिए सीधे सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया। सऊदी अरब अपने पड़ोसी देश यमन में भी कुर्द लड़ाकों से जूझता रहा और यमन के लोग गृह युद्ध पूरी तरह से खत्म होने की दुआ मांगते रहे।
हूती विद्रोहियों और सरकारी फौजों में संघर्ष के बीच सऊदी गठबंधन सेना ने कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं। यमन को गृह युद्ध ने दो हिस्सों में बांट कर रख दिया।
तुर्की की आक्रामकता ने उस समय एक नई ऊंचाई को छुआ जब उसने सीरिया पर पहले हवाई हमला और उसके बाद जमीनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। तुर्की के निशाने पर थे कुर्द लड़ाके, लेकिन आम लोग भी बड़ी संख्या में बेवजह इस संघर्ष में मारे गए। इसराइल में कभी लगा कि प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं, और कभी हालात ऐसे नजर आए मानो नेतन्याहू का जादू इसराइल से उतर रहा है। सितंबर में हुए चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बन न सकी और 12 महीने के भीतर तीसरी बार चुनाव की नौबत आ गई। अफगान शांति प्रक्रिया का जिक्र किए बिना साल 2019 की बात अधूरी रहेगी। तालिबान नेताओं और अफगान राष्ट्रपति के साथ एक गुप्त बैठक से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान के साथ शांति समझौते से पीछे हटने का ऐलान किया। हैरानी की बात ये थी कि इससे पहले दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। दूसरी ओर तालिबान ने अफगानिस्तान में जब जहां चाहा हमला किया, जो राष्ट्रपति अशरफ गनी के लिए सिरदर्द का सबब बना रहा। लेकिन साल के आखिरी दिनों में चुनाव के नतीजों ने उन्हें राहत दी और दोबारा राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त किया।
साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को एक खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी का मुजरिम करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है।
साल के आखिरी महीने में ही पाकिस्तान से एक अप्रत्याशित खबर आई और वो खबर ये थी कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। देश से बाहर अपना इलाज करा रहे मुशर्रफ के लिए राहत की बात ये रही कि पाकिस्तान की आर्मी उनके समर्थन में आगे आई, लेकिन कोर्ट के फैसले में लिखा गया कि अगर मुशर्रफ की मौत फांसी की सजा से पहले हो जाती है तो उनके शव को इस्लामाबाद के चौक पर 3 दिन तक लटका कर रखा जाएगा।
Russia, please, if you can, get us Hillary Clinton's emails. Please, Russia, please.
He asked Russia to go get the emails. We're going to look into his finances. I said, where did that come from? He always talked about Russia. The attorney general says, I'm going to recuse myself. And I said, why the hell didn't he tell me that before I put him in? Russia, 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 Russia. My wife said, you never spoke to anybody from Russia, darling. I said, that's right. President Trump is waiting.
साल भर सुर्खियां बटोरते रहे अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप साल खत्म होते होते भी सुर्खियों में बने रहे। अमरीकी इतिहास में ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ महाभियोग की मंजूरी दी गई है। कुछ अन्य खबरों की बात करें तो अमेज़न के जंगलों में धधकती आग ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। दूसरी ओर
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
ग्रेटा थनबर्ग की चुनौती के बावजूद जलवायु परिवर्तन पर मैड्रिड में हुए वैश्विक सम्मेलन से कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ जिससे समुद्री जलस्तर की वजह से डूबते द्वीपों पर रहने वालों को राहत मिलती। राहत की एक खबर दक्षिण अफ्रीका से जरूर मिली, जहां राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की तो सुनने वाले दंग रह गए। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ जब देश की कैबिनेट में 50% महिलाओं को शामिल किया गया। इसी तरह ताइवान ने भी एक कीर्तिमान रचा। ताइवान एशिया का पहला देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा प्रदान किया। साल 2019 अपने पीछे ऐसी कई घटनाएं छोड़कर जा रहा है जिनका असर नए साल में भी देखने को मिलेगा। मसलन अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग नए साल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करेगा। अमरीकी नेतृत्व चीन के साथ जारी ट्रेड वॉर की दिशा तय करेगा। नए साल में मध्य पूर्व में किस तरह के समीकरण बनेंगे ये भी काफी हद तक अमरीकी नेतृत्व पर निर्भर करेगा। इसी तरह ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव पर हांगकांग के विरोध प्रदर्शनों का कितना असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ताइवान के चुनावी नतीजे चीन के लिए सिरदर्दी का कारण भी बन सकते हैं। वहीं चीन की आर्थिक तरक्की वैश्विक अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने में मदद करेगी। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की जीत से ब्रेग्जिट की राह सुगम हो गई है। इसका सीधा असर ब्रिटेन और यूरोप के संबंधों पर दिखाई देगा। नए साल में आपसी मतभेदों को कम करके एकजुटता दिखाना और अपनी साख बचाना पश्चिमी देशों के लिए किसी चुनौती की तरह होगा। इसमें यूरोपीय यूनियन और नेटो की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। नई पुरानी चुनौतियों और सुनहरी उम्मीदों से भरा नया साल विश्व राजनीति में नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहां का ये वार्षिकी कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर आदर्श राठौर से।
समाचार। हांगकांग में क्रिसमस के मौके पर भी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़पें हुई हैं। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस के मौके पर संदेश जारी करने की परंपरा के दौरान इस बार सीरिया, यमन, यूक्रेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में शांति स्थापित होने की प्रार्थना की है। ईरान के कम चार प्रांतों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। बीबीसी समाचार।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अब अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। सभी सहयोगियों के साथ मोहम्मद शाहिद को दे अनुमति। नमस्कार।